नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। बिहार में मतदाता सूची के चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये प्रक्रिया तार्किक है, लेकिन अपनी टिप्पणियों में इसके समय पर सवाल उठाए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ऋण वसूली निष्पक्ष और सम्मानजनक तरीके से किए जाने पर जोर दिया। इस बात पर जोर दिया कि वित्तीय समावेशन को वित्तीय शोषण के बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ईडी ने सत्तेबाजी एप्स का समर्थन करने के लिए विजय देवराकोंडा, प्रकाश राज और राणा डग्गुबती सहित 29 हस्तियों पर मामला दर्ज किया। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भारी बारिश से गुरुग्राम ठप। और क्रिकेट में भारत और मेजबान इंग्लैंड आज लॉर्ड्स में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच का मुकाबला खेल रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण संविधान के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन उसने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के समय पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने पूछा है कि इस प्रक्रिया को बिहार विधानसभा चुनाव से क्यों जोड़ा जा रहा है और ये पूरे देश में है, चाहे चुनावी किसी भी राज्य में क्यों न हो रही हो। न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने टिप्पणी की है कि अगर चुनाव आयोग को नागरिकता की जांच करनी थी तो उसे इसमें मामले में पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। याचिकाकर्ताओं ने SIR के दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड को बहाना रखने पर सवाल भी उठाया है। चुनाव आयोग ने तर्क दिया है कि भारत में मतदाता होने के लिए नागरिकता की जांच आवश्यक है और आधार को नागरिकता के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया के तहत नागरिकता की जांच करनी थी तो उसे पहले ही यह कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि नागरिकता का मुद्दा गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। सोमवार को शीर्ष अदालत ने बिहार में आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं के समूह को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की थी। अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई है जिनमें दावा किया गया है कि यदि SIR संबंधी सूचना निकाय के आदेश को रद्द नहीं किया जाता है तो ये मनमाने ढंग से और बिना किसी उचित प्रक्रिया के लाखों मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि चुनने से वंचित कर सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस बात पर जोर दिया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC की ऋण वसूली प्रक्रियाएं निष्पक्ष, सहानुभूतिपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से संचालित की जानी चाहिए। साथ ही RBI की निष्पक्ष व्यवहारिक संहिता के अनुरूप भी होनी चाहिए। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में NBFC संगोष्ठी 2025 को संबोधित करते हुए कही। मंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन को वित्तीय शोषण के बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मंत्री ने NBFC के लिए शासन, जोखिम प्रबंधन और ग्राहक सुरक्षा को अपनी मूल मान्यताओं और नैतिकता के हिस्से के रूप में एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
Financial inclusion cannot be used as a pretext for financial exploitation. Lending should be based on genuine needs and repayment capacity of the customers. Loans should not be aggressively marketed or pushed. These messages are going to be seriously taken because that's what is going to be the underlying strength of NBFCs in the years to come.
गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक आज रांची में शुरू हुई। बैठक का उद्देश्य देश के पूर्वी विभागों झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार के विकास कार्यक्रमों पर चर्चा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की सफल यात्रा के बाद आज नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री ने यात्रा के दौरान भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की। श्री मोदी ने रियो डी जनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। इन यात्राओं का उद्देश्य ग्लोबल साउथ में भारत के संबंधों को मजबूत करना, अटलांटिक के दोनों ओर साझेदारी को मजबूत करना और ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ, इकोवास और कैरिकॉम जैसे बहुपक्षीय मंचों पर संबोधन को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने नामीबिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि अफ्रीका के केवल कच्चे माल के स्रोत के रूप में नहीं बल्कि मूल्य सृजन और सतत विकास के अग्रणी भूमिका निभाने वाले महाद्वीपों के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी देशों से सामूहिक प्रयास का आह्वान करते हुए आग्रह किया है कि वे अपनी स्वदेशी पहचान को संरक्षित करें और शक्ति से नहीं बल्कि साझेदारी के माध्यम से भविष्य का निर्माण करें। ब्राजील में बने सामान पर 50% आयात शुल्क लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के जवाब में ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने कहा है कि किसी भी तरह के विदेशी नियंत्रण को खारिज कर दिया जाएगा। आयात शुल्क पर अपनी योजना के बारे में ट्रंप के पत्र में ब्राजील पर अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर हमला करने और ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो पर ज्यादती करने के आरोप लगाए गए। बोलसोनारो 2022 के चुनाव का परिणाम पलटने की साजिश के आरोप में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने जुआ खेलने की अवैध एप्लीकेशन को कथित रूप से बढ़ावा देने के लिए 29 अभिनेताओं, इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स पर धनशोधन का मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई से सार्वजनिक जुआ रोकथाम अधिनियम का उल्लंघन हुआ। निदेशालय ने जिन पर मामला दर्ज किया है उनमें फिल्म अभिनेता विजय देवराकोंडा, राणा दुग्गावती, प्रकाश राज, निधि अग्रवाल और परिणीता सुभाष शामिल है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई है। सूत्रों ने बताया है कि प्रवर्तन निदेशालय को संदेह है कि जंगली रमी 2-3 और पेरीमैच साथ ही लोटस 365 सहित कुछ प्लेटफॉर्मों के लिए पैसे लेकर प्रचार करने में अवैध धन का लेन देन हुआ। इन एप्लीकेशन के जरिए अर्जित आय की राशि का अनुमान लगाने और हस्तियों की वास्तविक भूमिकाओं का पता लगाने के लिए व्यापक जांच की जा रही है। विशेष जांच दल ने कोलकाता के लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय में रिपोर्ट सौंपी है। न्यायालय ने पीड़िता के वकील को रिपोर्ट की एक प्रति देने का आदेश दिया था। न्यायाधीश सोमेन सेन और स्मिता दास की खंडपीठ ने जांच रिपोर्ट मीडिया में न देने का आग्रह किया है। अदालत ने 4 सप्ताह बाद अपनी रिपोर्ट जमा करने के आदेश जारी किए हैं। गुजरात के वडोदरा जिले में पुल गिरने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। कल पाडरा कस्बे के 5 गंभीर गांव में 4 दशक पुराने पुल के एक हिस्से के महासागर नदी में गिर जाने से कई वाहन डूब गए थे। बचाव अभियान अभी जारी है। जिला प्रशासन बचाव कार्यों की निरंतर निगरानी कर रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जनामणि ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार वर्षा जारी रहेगी। उन्होंने बताया है कि उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 से 3 दिनों और मध्य प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा जारी रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में मूसलाधार बारिश होने का और 22 जिलों में तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की। बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जबलपुर, रीवा, शहडोल, मंडला, नरसिंहपुर, उमरिया, शिवपुर, सागर, ग्वालियर और अन्य कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अमेरिका के टेक्सास में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 120 हो गई है। केयर काउंटी में लगभग 150 लोग अभी भी लापता है। तलाश और बचाव कार्य अभी जारी है। श्री अमरनाथ गुफा के 7,300 से अधिक तीर्थयात्रियों का जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर के कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। ये तीर्थयात्री 284 वाहनों से निकले। इस बीच कल लगभग 17,000 तीर्थयात्रियों ने दक्षिण कश्मीर हिमालय से स्थित अमरनाथ गुफा के दर्शन किए। घरेलू शेयर बाजारों में आज शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 290 अंक गिरकर 83,234 पर और जबकि निफ्टी 94 अंक गिरकर 25,383 पर काम कर रहा है। और भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन टेंडुलकर क्रिकेट टेस्ट मैचों के श्रृंखला का तीसरा मैच आज से लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। यह मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू हुआ। अंतिम समाचार मिलने तक इंग्लैंड बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर में 53 रन बना चुकी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।